ओम शांति। आज की मुरली से बोलो कौन से सुंदर पॉइंट थे। ढंग दोष और उससे भी सुंदर। अच्छा, वो तो कोई देखते नहीं होंगे, फिल्में तो छूट गई ना सबकी। या कुमार इंटरनेट पे देख लेते हैं, इंटरनेट पे घर घर में मूवी है ना आजकल, फिल्में आ गई हैं, किसी को पता भी नहीं चलता देखते हैं या नहीं, चुपचाप देख लेते हैं। लेकिन हमें क्यों नहीं देखना चाहिए, किसी को कहने की जरूरत नहीं, हम खुद को कहें हमें क्यों नहीं देखना चाहिए। सब जानते हैं, उत्तर नहीं दे रही माताएं। हाँ, इसने तो ठीक उत्तर दे दिया। क्या क्या होता है? कुमार नहीं बोल रहे हैं, बोलो। और ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे सब। वृत्ति खराब, संकल्प व्यर्थ, टाइम वेस्ट, और जिस लक्ष्य को लेकर हम चले हैं उससे दूर। लक्ष्य तो गया एकदम से, लेकिन आजकल ये चलता है थोड़ा बहुत ब्राह्मणों में भी, क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ है तो देख लेते हैं चुपचाप, मोबाइल में ही आ जाता है। लेकिन हमें स्वयं ही स्वयं को सावधान रखना है कि इससे हमें नुकसान ही होना है। पर कुछ गहरी बातें आज की मुरली से, ये तो धारणाओं की हैं। बाबा की मुरली में कुछ धारणाओं की साधारण बातें होती हैं जो हमारे जीवन में हमें बहुत मदद करती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो बहुत गुह्य धारणाओं की होती हैं। बोलो। आर्टिफिशियल लव। इस संसार से बुद्धि पल्लव छुड़ा लो। पल्ला होता ना माताओं का, साड़ियों का, छुड़ाओ इसको। संसार की किसी भी चीज ने पकड़ा ना हो हमें, बहुत गहरी बात है ये। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं ये उनके लिए है, जो आगे बढ़ रहे हैं। जो अभी फिल्में देख रहे हैं वो तो बहुत पीछे हैं, उन्हें तो अभी बहुत कुछ करना है। लेकिन जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ की राह पे चल रहे हैं उन्हें चारों ओर से अपनी बुद्धि को हटाना है। हटाना तो पहले ही लेना है, लेकिन अब बाबा ने क्योंकि कहा है मुरलियों में तो ये मुख्य बात आती रही है, संपूर्णता माना। देखो बाबा एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया करते हैं, सबको फट से याद आ जाएगा। हलवा जब बन जाता है तो क्या होता है, आगे ना सबको याद। हम भी जब बन जाते हैं तो सब छूटता है भाई, सब किनारे छूट जाते हैं, आसक्तियां छूट जाती हैं, ममत्व छूट जाते हैं, और हम अपने लक्ष्य में स्थित हो जाते हैं। लक्ष्य हमारा बहुत सुंदर है। और दूसरी बहुत अच्छी बात थी, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को नोट रखनी चाहिए, बाबा ने कहा पढ़ाई से राजाई ले लो। लेनी है राजाई या जो मिले ठीक है, थोड़ा ही काफी है। सत्युग में तो कोई कमी नहीं। कल परसों तो बाबा ने कहा कोई हीरे जवाहरातों के महल बनाएंगे, कोई केवल सोने के, सोने में जड़े जाएंगे ना हीरे मोती, किसी के सोने के, किसी के चांदी के, किसी के ईंटों के भी तो ईंटें लेकिन गोल्डन होंगी, लाल नहीं होंगी, तो सोने जैसी दिखाई देंगे, और सीमेंट भी ऐसा नहीं होगा तो मिलन अच्छा हो जाएगा। सोने की दुनिया में सब कुछ गोल्डन दिखाई देगा। तो क्या चाहिए माताओं को, सोने के महल बनाएंगे या अपने चांदी के ही ठीक हैं? फर्क क्या होगा? सोने के में ज्यादा अच्छी नींद आएगी क्या, चांदी के में कम आएगी? बोलो, माताओं से पूछते, माताओं को ज्यादा प्यार होता है इन चीजों से। कौन सा महल चाहिए? ये स्टेटस की भी निशानी होगी वहाँ, लेकिन एक और चीज है, इन चीजों में बहुत सुंदर सुंदर वाइब्रेशंस हैं। जिन लोगों को मिट्टी के मकानों में रहने का मौका मिला हो इस जीवन में, उन्होंने देखा होगा वो गर्म नहीं होते, वो ठंडे नहीं होते, हर मौसम में वो ठीक रहते थे। ईंटों के मकान तप जाते हैं, छत भी तप जाती है। आजकल जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ईंटों की और सीमेंट की, जब वो गिरती हैं, तो सबको ले मरती हैं, और जिसके छप्पर के मकान होंगे, गिरेंगे तो थोड़ा बहुत दब जाएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। तो राजाई लो पढ़ाई से चर्चा करेंगे इस पे, लेकिन मुझे एक दो बात बहुत अच्छी लगी बाबा की मुरली से। संडे सबको कौन सी ड्रेस दे दी बाबा ने? है सबके पास? है? किसने से ली है? हैं? बाबा ने से ली है, बाबा टेलर भी है। नहीं, उसको सिलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो ऐसी ड्रेस है। ठीक है, सबके पास ये चमकीली ड्रेस फरिश्ते की है, अलमारी में या यूज करने के लिए। कुछ बहुत अच्छी ड्रेस होती है तो मनुष्य उन्हें रख छोड़ता है, मैली ना हो जाए, कभी कभी पहनेंगे, लेकिन ये ड्रेस अब रोज पहनने की है। पहनी है परसों से या नहीं, ध्यान देना है। देखो बाबा की सबसे गुह्य बातें, लेकिन रमणीक और सरल शब्दों में, ये सबसे गुह्य बात है। सारे शास्त्र पढ़ लो, सूक्ष्म शरीर के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा मिलेगी तो भी समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है। एक लाइन और बना लो, आगे आ जाओ लेट आने वालों, लास्ट सो फास्ट, इधर आ जाओ। लेट आने वालों को अच्छा मौका तो मिलता है, माताएं थोड़ी लेट आती हैं। बहुत गुह्य बात है सूक्ष्म शरीर की, मोटी नहीं है, लेकिन बाबा ने उसको कैसे सरल शब्दों में कह दिया, चमकीली ड्रेस तुम्हें दी है, और ये शब्द कहे पहनना नहीं आता। सोचेंगे सभी, हम पहनते हैं क्योंकि सुप्रीम से मिलन मैली ड्रेस से नहीं हो सकता, मिट्टी की ड्रेस से नहीं हो सकता। मिट्टी की ड्रेस कौन सी? ये देही मिट्टी है ना, शरीर को ड्रेस कहते हैं, गीता से आए हैं ये सब शब्द पहले से ही। ये शरीर तुम्हारा वस्त्र है, इस वस्त्र में आत्मा चिपक गई है, उलझ गई है। बाबा हमें इससे मुक्त करते हैं, और याद रखेंगे सभी ये गुह्य बात, जो देह से जितना डिटैच, समझते हैं डिटैच, अनासक्त, वो संसार से उतना ही डिटैच, ऑटोमेटिक हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा ने सहज धारणा बताई, एक एक चीज से डिटैच हो कि धनमाल है छोड़ो इसे, जंगल में चलो, ये बहुत अच्छे अच्छे कपड़े इन्हें न पहनो, देखो ही नहीं, ये नहीं, देह से डिटैच हो जाओ, स्वतः ही सब चीजों से डिटैच हो जाएंगे। समझ रही हैं माताएं? समझ रही हैं? बोली बोली बैठी हैं, मैं देख रहा हूँ, कुछ कह लग रहा अच्छी बात तो हो रही पर पता नहीं क्या हो रही है, माताएं सोच रही है। देह से डिटैच माना न्यारे, तो अभ्यास करना है। मैं देखो सिंपल अभ्यास, मैं ये हूँ ये नहीं, देखो अपने देह को, मैं ये नहीं मैं तो ये हूँ। सरल न्यारेपन की फीलिंग में आना है हमें, डीप फीलिंग। और जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, शांत में बैठे अपने अंदर चले जाएं और गहराई से देखें, मैं आत्मा शांत हूँ, बहुत गहरी शांति मेरे पास है। देखें उस शांति को, रियलाइज करें, महसूस करें, बहुत गहन शांति मेरे पास है। मैं पवित्र हूँ, संपूर्ण पवित्रता है मेरे पास, मैल चढ़ा दी है मैंने उस पर उतार देनी है। ऐसे गहनता में चलें रोज एक बार, मैं ये नहीं हूँ, डिटैच होने लगेंगे। तो एक बाबा ने कहा, ड्रेस दी है पहननी आती है, दूसरा कहा बहुत समय नीचे ही रहे हो अब ऊपर रहो। चलो वो तो आप खाती हो कभी कभी, नहीं खाते ना, ठीक है क्या करेंगे बाहर का। एक व्यक्ति ने समोसे, कुमार ने समोसे खरीदे बाजार से, बाहर का सारा निकाल दिया, अंदर अंदर का खाया। किने उसे पूछा बाहर का क्यों निकाला, कि बाबा ने कहा बाहर का नहीं खाना है। अंदर का खा गए सारा, बाहर का नहीं खाना है। जिसको रोज अमृत पीने को मिलता हो, ब्रह्मा भोजन खाने को मिलता हो, जो तन मन को चैन दे, उसको बाहर के भोजन में बदबू आती है। हम तो ट्रेन में जाते हैं, लोग खाते हैं पास बैठ के, उनके पास बैठना मुश्किल हो जाता है, लहसुन प्याज की बदबू आ रही है। आजकल तो नॉन वेज भी देते हैं, ऐसी गंदी दुनिया हो गई, सब चलता है एक ही साथ। तो हम सभी इस ड्रेस को पहनेंगे। देखो कौन सी है ये ड्रेस, सभी इसको बहुत सहज भाव से समझ लें। आत्मा दो शरीरों में बैठी है, बाहर है स्थूल शरीर और बिल्कुल इसके अंदर, इसमें फैला हुआ, इसमें समाया हुआ, ठीक ऐसा ही है लाइट का शरीर। दो शरीरों में आत्मा रहती है। कहां से बनता है ये शरीर? जो कुछ हम सोचते हैं, जो हमारी स्थिति है, संकल्प ही समझ लें बस, सब कुछ संकल्पों से ही पता चलता है ना, हमारी स्थिति, हमारी भावनाएं, हमारे संस्कार, उन सब के आधार से हमारे संकल्प चलते हैं ना। हम निरंतर यहाँ बैठकर सोचते हैं, उसके वाइब्रेशंस सारी देह में फैलते रहते हैं। वो वाइब्रेशंस सूक्ष्म शरीर को बनाते हैं। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सिंपल परिभाषा। आप सारे वेद पढ़ लो, दर्शन पढ़ लो, साथ पता नहीं चलेगा सूक्ष्म शरीर क्या है। सूक्ष्म शरीर है क्या, है कहां से आया, ये किसी को पता नहीं। हम सबके पास है ये शरीर, और जब से आत्मा परम धाम से नीचे उतरी, देह में आई, सोचना शुरू किया, सूक्ष्म शरीर बन गया। आत्मा एक शरीर छोड़ा, सूक्ष्म शरीर सहित बाहर निकली, गर्भ में गई, सूक्ष्म शरीर सहित नए शरीर में चली गई। तो सूक्ष्म शरीर आदि से अंत तक हमारे पास रहता है, आत्मा उसके बिना नहीं है। उससे ही वो यात्रा कर रही है, एक शरीर से दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। क्लियर है? देखो मुझे एक बात और याद आ गई, आजकल बहुत सारे बच्चों को भयानक बीमारियां, कैसे 2.5 साल की लड़की अभी लेके आई एक माता नीचे, इसी ग्रुप में जो नीचे था शिविर का, बच्ची को कैंसर। अब नहीं, 1 साल की थी तब से हो गया था, एक बार उसकी ट्रीटमेंट हुई ठीक हो गई, फिर दोबारा चालू हो गया। अभी डॉक्टर कहते हैं भाई इसको कीमोथेरेपी होती है ना, जो जला देते हैं अंदर जर्म्स को, का दोबारा कर तो सकते हैं पर गारंटी कुछ नहीं। डॉक्टरों को ये समझ में नहीं आता कि 1 साल की बच्ची को कैंसर क्यों हो गया, ये किसी की समझ में नहीं आता, कुछ कारण तो हो। मैं से पूछा, मैं बेंगलोर में था तो एक सिविल सर्जन बहन ज्ञान में आई 1 साल से, तो उसने मेरे से प्रश्न पूछा कि हमारे सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स की मीटिंग हुई, चर्चा हुई, 5 साल की लड़की को कैंसर निकला है, वो है हॉस्पिटल में, सब सोच रहे हैं क्यों 5 साल की लड़की को क्यों, भाई बड़ा है तो लोग कहेंगे इन्हें तंबाकू खाया, इन्हें शराब पी, इसने ये किया इसलिए कैंसर हुआ। ये बात 2-3 साल पहले की है, लेकिन अब का मैं बता रहा था, 1 साल की लड़की को कैंसर क्यों हुआ। हाँ, तो मैंने उन्हें बताया, ज्ञान ले चुके थे वो थोड़ा थोड़ा, और बहुत सारी बीमारी ऐसे ऐसे आते हैं कि जन्म लिया है बच्चे ने और जन्म से ही शुगर है उसको, जन्म लिया है दोनों किडनी फेल है। एक बच्चे को अभी लाए, 6-7 साल की लड़की थी, कि इसको जन्म से ही एक किडनी थी, दूसरी थी नहीं, दूसरी माँ ने दी। देखो कैसा कैसा, एक केस आया कि जन्म लिया है और ब्रेन बस है ही नहीं, जैसे बस ये तो है सिर पर ब्रेन काम नहीं कर रहा, तो उसका देह भी विकास नहीं होगा, जल्दी मृत्यु हो जाती है। जो बीमारियां इस शरीर में हैं उसका सूक्ष्म अंश सूक्ष्म शरीर में भी चला जाता है, वो दूसरे शरीर में गर्भ में जाती आत्मा, वो उस स्थूल शरीर में भी चला जाता है उससे। इस सिद्धांत से आप एक चीज और समझ सकते हैं, कोई भी रोग हमें है वो हमारे सूक्ष्म शरीर में भी है, जैसे स्थूल में है मोटे रूप से, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म रूप से है। अगर हम अपने सूक्ष्म शरीर को स्वस्थ कर दें तो स्थूल शरीर भी ठीक हो जाएगा, और उसका एक सुंदर तरीका अपनाएंगे, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, मुझसे पवित्रता की सफेद किरणें पूरी देह में फैल रही हैं, ये सूक्ष्म शरीर को हेल्दी बनाएंगी, निरोग करेंगी, और इससे स्थूल शरीर भी निरोग होंगे। तो हम ऐसा अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर में हूँ, जैसे हमें ये आदत है ना स्थूल शरीर की, हमें सोचना नहीं पड़ता, नेचुरल है, हमें आदत है, वैसे ही आदत बनाएंगे कि मुझे सूक्ष्म शरीर है जिसके अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, पूरे शरीर से किरणें फैलती हैं रंग बिरंगी, ऐसा अपना एक स्वरूप देखा करें। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, यही शरीर मेरा लाइट का बन गया, अंग अंग से किरणें फैल रही है, ये होगी हमारी चमकीली ड्रेस सूक्ष्म शरीर। इसके साथ ही हम बाबा के पास जा सकेंगे, भगवान से मिलन मिट्टी की ड्रेस पहन के नहीं होगा, बहुत अच्छे मिलन के रोज अनुभव करने हैं। मिलन केवल ओम शांति शांति वन के डायमंड हॉल में ही नहीं, मिलन बोलो परम धाम में। अच्छा वो तो ठीक है, मिलन रोज। और ऐसा कर लेना है मिलन, और इससे भी आगे आओ मिलन, भाई बोलो हर समय मिलन जब चाहे। आजकल फोन है ना सबके पास, मोबाइल, अपने घर में फोन करना, फटाफट पर्स से निकालेंगी माता है, ठक ठक ठक, हेलो, हो गया ना मिलन, होता है। तो जब साइंस के साधन जब चाहे मिलन करा सकते हैं, तो क्या हम बोलो, मैं कुमारों से पूछ रहा हूँ, कुमार कुछ ठंडे से बैठे हैं, दो चार कुमार अति ठंडे नजर आ रहे हैं मुझे, चुस्त हो जाओ जरा। भगवान से जब चाहे मिलन मना लें, ऐसा चाहते हैं या नहीं, सबसे सुंदर बात है ना। आज मैं सोच रहा था, शाम को मैं घूमता हूँ, आजकल थोड़ी छुट्टी की हुई है कुछ कामों से, मैं सोच रहा था देखो हमने कब से यात्रा शुरू की थी। जैसे आप अपने घर से मधुबन आए, मान लो किसी को 3 दिन लगते हैं, है? किसी को 1 ही दिन लगता है, पर आसाम वालों को 5-5 दिन लगते हैं। वहां से चले, जब यहाँ जाएंगे याद करेंगे ना 5 दिन पहले चले थे, फिर वहां आए, फिर दिल्ली आए, फिर स्टेशन पे रहे सारा दिन, फलाने सेंटर से खाना आया था हमने खाया था, फिर हम दूसरी ट्रेन में बैठे, हमारी ट्रेन छूट गई थी। नेपाल वालों के साथ और आसाम वालों के साथ हर बार होता है कि उधर से जो ट्रेन आती है दिल्ली, वो हमेशा 15-15 घंटे लेट, और यहाँ वाली ट्रेन छूटती है, कितना बुरा हाल होता है बेचारों का। सामान भर रहे हैं ट्रेन में, टीटी बेचारे सहयोग देते हैं, कुछ कहते नहीं, भाई छूट गई, दूर से आए बैठ जाओ जहाँ भी जगह मिले, लेकिन तकलीफ तो बहुत होती है ना। अब उस सब को याद करेंगे ना, वो मधुबन में पहुंच गए, शांत, जो कुछ भी हुआ ठीक है, पहुंच गए अपने घर, सारा याद करेंगे ना, एक एक सीन सामने आएगा। याद करो कब उतरे थे अपने घर से, कब, फिर क्या बने, देवता, कितना सब कुछ सुंदर था, आज कल रोज मुरली में आ रहा है, ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ तुम्हें जहाँ सुख ही सुख है, अपार सुख, अथाह धन संपदा, जिसकी गिनती नहीं। सोचा कभी आपने, जब बाबा कहते हैं कि हीरे मोती ऐसे ही पड़े रहेंगे जैसे पत्थर पड़े हैं आजकल बाहर, कैसी होगी वो दुनिया, अथाह सुख शांति। फिर हम नीचे उतरे, भक्ति में आए, क्या क्या करते थे भगवान को पाने के लिए, सोचते हो कभी, सोचना, हमारी मूर्तियों के द्वारा भी कैसे भक्तों की कामनाएं पूरी हो रही थी। मैं सोचा एक सेकंड के लिए, हम भक्ति में भी सबकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे थे, दूसरा संकल्प फट से आया, नहीं हम नहीं कर रहे थे, हम तो नीचे उतर आए थे ना। गीता में ये बहुत अच्छे महावाक्य हैं, जो भक्त जिस जिस देवता की जिस जिस भावना से पूजा करता है, मैं उसके द्वारा उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूँ, ये सत्य है। भक्ति मार्ग में जिस जिस देवी देवता, वो हम थे, लेकिन हम तो देने की स्थिति में नहीं थे ना, पुजारी बन गए थे, तो हमसे भक्त मांग रहे थे, तो बाबा सबकी कामनाएं पूर्ण कर रहा था। विचार करना इस बात पे, मांग हमसे रहे हैं, दे बाबा रहा है, इसका अर्थ है उसका हमसे कितना ज्यादा प्यार है, कितना प्यार है, कि हमसे मांग रहे और वो सोच रहा ये खाली न चले जाएं इनके द्वार से, मैं दे देता हूँ। उतरते आए हम और संगम आ गया, और क्या क्या हुआ सोचो, क्या क्या हुआ। मेरी तो लंबी यात्रा हुई है, मैं सोच रहा था आज इसी हॉल में भगवान यहीं बैठते थे, बस इतने ही होते थे क्लास में। बाबा जब यहाँ से गुजर प्रवेश करते थे ऐसा लगता था सारे हॉल में करंट छा गया। हम छोटे थे तो थोड़ी सुस्ती से बैठे रहते थे, सवेरे जल्दी उठ जाते थे ना, 5:30 से बैठा दिया जाता था, 6:15 मुरली शुरू हो जाती थी, 6:10 पर बाबा आते थे, तो थोड़ी सुस्ती होती थी। बाबा ने प्रवेश किया और जैसे करंट फैल गया, चुस्त एकदम, सब डिवाइन हो गया। मैं सब वो याद कर रहा था आज, संगम आया, भगवान उतर कर आया, देखा ऊपर से ये मेरे आत्म बच्चे, ये तो राह भटक गए हैं, क्या हो गया है इनको, आ गया और क्या क्या कर रहा है हमारे लिए, देखो मुझे देखो, क्या क्या कर रहा है हमारे लिए, बोलो क्या क्या कर रहा है, जरा याद करो। बहुतों को पता नहीं वो क्या क्या कर रहा है, सोचता है ज्ञान दे दिया और हमारे पीछे पड़ गया है, मुझे याद करो। खाओ नहीं बाजार का, टीवी न देखना, फिल्म न देखना, पीछे लगा हुआ हमारे, पता नहीं कहाँ पहुँचा कर चैन लेगा। क्या क्या दे रहा है वो हमारे हमारे लिए, क्या क्या कर रहा है, अब सोचना, बड़ा मजा आएगा। उसको पता है ये वही हैं, कौन जो कभी विश्व पर राज करते थे, ये वही हैं जिन्होंने द्वापर से भी बड़े बड़े काम किए हैं, ये वही हैं जिनकी मंदिरों में भक्त पूजा कर रहे हैं। अब वो शक्तियां देता है, वरदान देता है, हम बहुत कम करते हैं वो ज्यादा देता है, इसलिए उसको भोलानाथ कहा जाता है। ये सच है, हम बहुत कम करते हैं वो बहुत ज्यादा दे रहा है। तो मैं सोच रहा था कहाँ पहुंच गए हम, और अब कहता है चलो अब चलने का समय आ गया, खेल पूरा हो रहा है, इसको सुदर्शन चक्र कहते हैं। तो याद किया करे रोज, रोज प्रभु मिलन हो, सबको सुख पाना है संगम युग पर। कौन सा सुख, ये बाबा से मिलन का तिंद्रिय सुख। और ये कितना सुंदर मौका है, जब चाहो मिल लो, विचार करो ऐसा मौका हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर कह दे मेरा द्वार खुला है जब चाहे आ जाना मिलने, कह ही नहीं सकता कोई बड़ा आदमी संसार का ऐसा, केवल हमारा बाबा कहता है जब चाहो आ जाओ, लेकिन ड्रेस पहन कर आना पड़ेगा, मैली ड्रेस से मुझे बदबू आएगी, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे सामने। अब पहननी सीख लो ये ड्रेस, कई बार पहनो, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उन्हें ध्यान पूर्वक इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, बार बार कि ये नहीं प्रकाश की काया में हूँ, इधर आत्मा चमक रही है, इधर देह प्रकाश की चमक रही है, बिल्कुल लाइट। तो ये मिलन का सुख संसार की सभी चीजों से हमें डिटैच कर देगा, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, हमें कुछ और डिटैच होने की कुछ भी नहीं करना है। और ये भी याद रखेंगे सभी, जो ऐसी स्थिति बनाएंगे उनका लौकिक भी, लौकिक वाले बैठे हैं सब, माताएं भाई सोचते हैं ना कि ये स्थिति तो बना ले, पर हमारे पास तो पैसे की बहुत कमी है, ये स्थिति तो बना ले पर हमारा काम धंधा तो अच्छा नहीं चलता। क्या उत्तर है, अगर ये स्थिति बना ले तो धन, बोलो धन, छम छम करके नीचे आएगा, धन की बरसात होने लगेगी आपके पास, और काम धंधे फर्स्ट क्लास निर्विघ्न चलने लगेंगे। बस बात यही हो रही है कि मनुष्य उन चीजों में इतना उलझ चुका है कि अपनी स्थिति को श्रेष्ठ नहीं बना पाता, तो स्थिति श्रेष्ठ न होने से परिस्थितियां और बिगड़ती जाती हैं। थोड़ा सा अपने को हटा के चारों ओर से 6 मास अपनी स्थिति अच्छी बनाकर देखो और सब कुछ सुंदर हो जाएगा। बहुत सारे कुमार कुमारियों का अनुभव जिनको नौकरियां नहीं मिलती, 21 दिन की योग भट्टी की फटाफट अच्छी नौकरी मिली। एक का तो अभी मैसेज आया कि उसे नौकरी नहीं मिलती थी, पता नहीं 2 साल हो गए थे, उसने 21 दिन योग अभ्यास किया, 3 मिल गई एक साथ। अब सोच रहा हूँ कौन सी में जाऊं, 3 ऑफर आ गए एक साथ, 3 अपॉइंटमेंट लेटर। योग बल सबसे बड़ा बल है, इसके समक्ष कोई परिस्थिति ठहरेगी नहीं। परंतु युवकों के साथ क्या हो रहा है, युवक बैठे मेरे सामने इसलिए मुझे कुछ कहना है, क्या हो रहा है युवकों को सब ध्यान देंगे, निगेटिव साइड पर ज्यादा जा रहे हैं, इससे उनका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। उन्हें ये पता नहीं चलता, वो तो आनंद लेते हैं उसको, ये इतना बड़ा व्यसन होता है। देखो एक जगह में गया एक माताजी जो वकील है, उसको और कोई नहीं, बहुत अच्छा बड़ा मकान, एक लड़का है जो 8वीं क्लास में पढ़ता है, छोटा होगा ना, लेकिन उसका हाल इतना बेहाल था आप सोच ही नहीं सकते। वो मनुष्य भी है या नहीं है ये भी आप नहीं कह सकेंगे। और क्या कर रहा है सारा दिन, टीवी से बिल्कुल चिपक कर बैठा है, 6 इंच पे बैठा ऐसे रहता है टीवी के सामने। मैंने उसकी माँ को कहा दूर से इसको दिखता नहीं क्या, दिखता तो है। अब उसे ये भी नहीं पता कि टीवी से जो बैड वेव्स निकलती हैं वो तो उसको नष्ट कर रही है, उसका ब्रेन बिल्कुल जा रहा है, डल एकदम, हाथ भी कांपते हैं ऐसे। लेकिन वो लड़का अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं सोच सकता, सोच भी नहीं सकता, उसकी विवेक शक्ति मर गई है। माँ बेचारी दुखी, एक ही तो लड़का है, पति भी नहीं है, क्या करूं, घर में उदासी छाई हुई थी, हम ले गए अपने घर में, उदासी, सूखा पड़ा हुआ था, जैसे जैसे कोई पानी भी देने वाला है ना हो किसी को। और माता मेरे से पूछने लगे मैं क्या बताऊं उसको, पहले ही दुखी है, ज्ञान योग होता नहीं, आत्माएं बहुत पाप करके आई है ना, इतने कराए कि यहां भी नहीं समझ रहे कि तुम क्या कर रहे हो, पढ़ाई नहीं, सारा दिन टीवी, और टीवी में बच्चे क्या देखते हैं आप जानते हैं, कार्टून, गेम्स, ये वो बेकार की चीजें, कोई फिल्म चल रही है। सब युवकों को बचना है इससे, जिसको अपने जीवन को सुंदर बनाना है, जिसे इस जीवन में कुछ करना है, वो इस माया से बचे। ये विज्ञान के वरदान भी हैं, लेकिन बहुत बड़े अभिशाप भी हैं युवकों के लिए, और जो युवक इसमें लग जाते हैं उनका जीवन तो गया बिल्कुल, उनको पश्चाताप और रोने के सिवाय कुछ नहीं मिलता, उनके माँ बाप भी बेचारे रोते हैं। समझ रहे युवक, समझ रहे या नहीं, तुम तो समझदार हो, मैं औरों से पूछ रहा हूँ। देखो एक कहानी सुना देता हूँ, टाइम तो हो रहा है पर कहानी बहुत उपयोगी है। एक युवक मेरे पास आए 30 वर्ष के, कहा मैं लेक्चरर हूँ लेकिन मेरी एक समस्या है कि जब मैं पढ़ाने जाता हूँ क्लास में तो सब कुछ भूल जाता हूँ, खूब पढ़कर जाता हूँ वहां जाते ही भूल जाता हूँ, क्या करूँ। ज्ञान में आए हुए अभी 3 साल ही हुए थे, जो प्रोग्राम हमारे चलते हैं अंसरोर में उसमें आए थे, उसकी पत्नी भी साथ आई, चेहरा सूखा हुआ। मैंने कहा क्या क्वालिफिकेशन आपकी, पढ़ाई कितनी, 4 डिग्री हैं बड़ी, एमए, बीएड, एमफिल, एमबीए, लेक्चर हूँ। भूल जाते हो? बिल्कुल, मैं सब भूल जाता हूँ। मैंने कहा ज्ञान लिया, 3 मास से लिया, पता नहीं कहाँ से मैंने उससे पूछ लिया, सो के कितने बजे उठते हो? कहा 7 बजे। मैंने कहा बहन जी ने नहीं बताया कि अमृत वेला उठना चाहिए? कि बताया तो है पर मैं तो नहीं उठता। मैंने कहा क्यों, कॉलेज कितने बजे जाना होता है? 8 बजे। 7 बजे भी इसलिए उठता है कि 8 बजे कॉलेज जाना है, नहीं तो और सोता। अब उसकी जो मिसेज थी उससे रहा नहीं गया, उसने कहा भाई साहब ये रात को 10:30 बजे लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं और क्या देखते रहते हैं मुझे तो पता नहीं, एक दो बार मेरी आंख खुलती है देखती हूँ ये लैपटॉप से चिपके हुए हैं और फिर पता नहीं क्या है बस। अब मैंने उसे पूछा क्या देखते हो भाई, अब बेचारे को बताना पड़ा, पत्नी साथ बैठी थी वो खोल देगी भेद सारा। कहा मुझे गंदी फिल्में देखने की आदत पड़ गई है। देखिए आप सब युवक ध्यान से सुन ले क्या प्रभाव है इनका जीवन पर। कहा मैं गंदी फिल्में देखता हूँ, 10:30 से 1:30 बज जाता है, फिर सोता हूँ तो नींद आती नहीं, वो चलता रहता है अंदर फिल्मों की तरह, सपने आते रहते हैं, फिर उठना ही पड़ता है, नींद मेरी पूरी नहीं होती। मैंने कहा बस यही कारण है, क्योंकि तुम्हें नींद पूरी नहीं होती इसलिए मेमोरी नष्ट होती जा रही है। देखो 30 साल का युवक जिसके पास 4 बड़ी डिग्री हैं, जो बहुत जल्दी प्रोफेसर बन जाएगा, लेकिन उसकी मेमोरी वीक होती जा रही है। मेमोरी को ठीक रखने के लिए अच्छी नींद, अच्छा भोजन परम आवश्यक है। तुम पूछा क्या करूं? मैंने कहा ये सब बंद करना पड़ेगा अगर जीना है। मैं कह रहा हूं अगर जीना है, पढ़ाई लिखाई लेक्चरशिप तो छोड़ो, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है 1 साल में ही, या तुम पागल होके भटकोगे। उसकी पत्नी कहने लगी बिल्कुल ठीक कहते हो आप, क्या करूं मुझे बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा इसका लैपटॉप छीन के पास के तालाब में फेंक देना तब ये सुधरेगा। फिर तो उसको मैंने समझाया, उसने भी समझा कि जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, वो पागल होने वाला निश्चित रूप से 6 मास में ब्रेन की सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी, उसको नींद नहीं आती। जो व्यक्ति सोएगा नहीं 2-4 मास वो तो उसको तो पागल होना ही है, फिर कैसा जीवन रहेगा। सब युवक समझ ले, मैं युवकों के लिए सच्ची कहानी है, बनावटी नहीं, मैं थोड़ी सुनाई, अति भयानक थी वो। उनका चेहरा आप देखते, 30 साल का लड़का जैसे 80 साल का है बूढ़ा। इसलिए ये संगम युग का जीवन बहुत मूल्यवान है। पहले माया और तरह की होती थी, अब माया बड़े रॉयल रूप की आ गई है घर घर में, इसे बचना है। बाबा से एक ही बार तो ये सब मिलता है ना, जन्म जन्म का भाग्य बनाने का सुंदर मौका हमारे हाथ में है। भगवान जैसे हमारे द्वार पर आ गया है सब कुछ देने। देखो जब हम छोटे थे और ज्ञान में आए तो उन दिनों एक गीत बहुत बजा करता था, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे, ये हमारे यहाँ बजता था बहुत योग में, अपने गीत तो थे नहीं, बहुत बजता था, हमें बहुत नशा चढ़ता था कि सचमुच भगवान द्वार पर खड़ा है। भगत भर दे रे झोली नहीं, भगत भर ले रे झोली, जितना चाहे ले लो। ऐसा सुंदर मौका भाग्यवान आत्माओं को ही तो मिला है, इसलिए बड़े हैं या छोटे सभी वानप्रस्थी हैं, अब तो सबको अपना अपना भाग्य बना लेना है। मैं माताओं को भी कहूंगा, माताओं के बच्चे जब इस तरह गलत मार्ग पे जाते हैं तो माताएं बेचारी बहुत दुखी होती हैं, पढ़ते नहीं हैं वो, पूरे संघ में आके आजकल व्यसन बहुत चल पड़े हैं दुनिया में, गोलियां मिलने लगी हैं, उन्हें खा लेते हैं। मैं तो सुना कि टूथपेस्ट ऐसे मिलने लगे हैं, उसे खा लेते हैं जरा सा नशे के लिए, आनंद है उसमें, लेकिन वो आनंद वो जहरीला आनंद है। इसलिए अपने बच्चों पे ध्यान भी देंगे, माताएं सिखाएंगी। देखो किया तो कुछ नहीं जा सकता, बच्चे आपके पास तो रहते नहीं सारा दिन, कहीं बाहर पढ़ने भेज दिया है, कोई हॉस्टल में रहते हैं, कोई और दूसरे शहरों में रहते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार डालें अपने बच्चों में, माताएं वाग्याकारी रहें, वो अच्छा चिंतन करें अपने जीवन के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, खुद सोचें और सुंदर निर्माण करें अपने जीवन का, क्योंकि माँ बाप सदा तो उनके पीछे लगे भी रहे नहीं रहेंगे, और लगे भी रहें तो वो उनकी बात मानेंगे नहीं। ये व्यसन ऐसी चीज है, जब लग जाते हैं तो कोई किसी की सुनता नहीं है, फिर तो उनके फ्रेंड्स ही उनके लिए सब कुछ होते हैं। इसलिए अपने घरों का माहौल भी बहुत अच्छा बनाएं और सब चिंतन करना, बाबा रजाई देने आया है, पढ़ाई से रजाई ले लो। आज ये बहुत अच्छी बात थी। पढ़ाई माना ये नहीं कि मुरली पढ़ लें 10 बार रोज, कई ऐसा भी सोच लेते हैं कि बाबा ने कहा पढ़ाई से रजाई लो तो सारा दिन पढ़ते रहो, ये नहीं उसका अर्थ। जो पढ़ाई बाबा ने पढ़ाई है उसे जीवन में धारण कर लो। पढ़ाई हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाती है, और बड़े पद के लिए श्रेष्ठ बुद्धि चाहिए। कल बहुत सुंदर महावाक्य था, जिसने जितने ज्यादा विकर्म विनाश किए उतना है उच्च पद। तुम्हारे पद का आधार है तुमने कितने विकर्म विनाश किए हैं, क्योंकि जितने जितने विकर्म विनाश होंगे, समझो आत्मा गंदगी से खाली हुई ना तो अच्छाइयों से भरपूर हो जाएगी। अगर वो पहले ही गंदगी से भरी हुई है तो अच्छाइयों के लिए जगह नहीं है, शक्तिशाली बन जाएगी। जितने हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे, ईश्वरीय खजाने हम में भरते जाएंगे, हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। तो इस पढ़ाई को अपने जीवन का स्वरूप बनाते चलना है। मुरली तो 1-2 बार पढ़ सुन लेना ही काफी होता है, ये नहीं हम सारा दिन मुरली लेके पढ़ते रहे। कई सोचते हैं ना हमें तो दादी जानकी की तरह 22 बार पढ़नी चाहिए मुरली। वो समय था जब और काम होता नहीं था ना, सेवा भी नहीं होती थी, तो भाई मुरली पढ़ो, उनसे अच्छी अच्छी पॉइंट निकाल लो। लेकिन अगर आप समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, तो 1 बार पढ़ के ही सब ग्रहण कर लेंगे। अगर बुद्धि बहुत कमजोर है तो 20 बार पढ़ के भी 21वीं बार फिर सोचेंगे पता नहीं क्या कहा बाबा ने आज। एक हंसी की बात और सुना दूं। एक पंजाबी माता साकार बाबा के समय ज्ञान में थी, उससे पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन वो बहनों से मुरली रोज मांगती थी, मुझे मुरली दो, बाबा ने कहा मुरली पढ़ो। चलो भाई बहने बेचारी सोचती इसकी भावना, तब मुरली ऐसे नहीं मिलती थी ना जैसे आज है, एक कॉपी गई सेंटर में उसकी, ये फोटोकॉपी तो बनती नहीं थी तब, ये सब था ही नहीं ना विज्ञान का, तो वो क्या करती थी मुरली हाथ में लेगी। आप खूब हंसेंगे ये बात सुन के पंजाबी में, और क्या कहेगी मुख से बोलेगी, बाबा कहता बाबा कहंदा तू मैनू याद कर मैं तेनू याद करूं। ये पंजाबी भाषा है, तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूं। बस वो सारी मुरली ऐसे ऐसे करेगी, 10-20 बार ये कहेगी, लो बहन जी अपनी मुरली पढ़ ली मैंने। प्यार था उसका, इसके भी नंबर देता है ना बाबा। इसलिए पढ़ाई से रजाई लो। एक एक चीज जो मुरलियों में है वो हम में रजाई संस्कार डालती है। देखो बाबा की मुरली में एक सुंदर बात आती है, सबको सुख दो, ये रजाई संस्कार है। राजा विचार करेगा मुझे अपनी सारी प्रजा को सुख देना है। जो राजा अपनी प्रजा को सुख नहीं दे सकता उसकी राजाई चली जाती है। राजवंश खत्म तब हुए, इतिहास आप पढ़ें तो राजवंश खत्म तब हुए जब कोई राजा ऐसा आ गया जो स्वार्थी था, जो व्यसनी था, जो प्रजा पे ध्यान नहीं देता था, जो सताता था, उसको किसने खत्म किया, दूसरा वंश आया। तो बाबा राजा ही सिखा रहा है हमें करना, सबकी पालना करो, रहम दिल बनो, ये राजा ही संस्कार है ना। इस देव देवियों के संस्कार भी हैं और ये राजा ही संस्कार हैं। तो हम सभी पढ़ाई पर इस तरह ध्यान देंगे तो राजा ही का तिलक हमें मिलता रहेगा। तो रोज सवेरे, कल सवेरे और अब सोते समय, सोएंगे तो कौन सी ड्रेस पहनकर, ड्रेस तो बदलते हैं ना, अब चमकीली ड्रेस पहन लेना जरा, उठेंगे उसी ड्रेस के साथ प्रभु मिलन का सुख लेंगे। तो सभी ध्यान दें, सवेरे और शाम दो बार बहुत अच्छी तरह सूक्ष्म लोक में जाकर, बाबा ने कहा ना मियां बीवी, बच्चे कहते हैं मियां ऊपर बीवी नीचे, तो कहा चलो तुम थोड़ा आओ थोड़ा मैं आता हूँ, हम ड्रेस पहन के यहाँ से ऊपर चले, बाबा अपने धाम से नीचे आए, दोनों का वहाँ मिलन हो। दो बार सवेरे और शाम अच्छी अनुभूति सबको करनी है मिलन की, योग लगाने की नहीं, केवल मिलन, मिल गए, जैसे वहां जाके स्टेज पे बाबा आपको बुला ले और कह दे मेरे सामने बैठ जाओ 10 मिनट, कितना आनंद आ जाए, सिर पे हाथ रख दे, दृष्टि दे जी भर के, ये नहीं चलो चलो चलो, वहां तो ऐसे होता है ना, चलो आगे बढ़ो, दृष्टि मिली ही नहीं, आधा सेकंड भी नहीं। तो सवेरे कल से शुरू कर दें सभी, चमकीली ड्रेस अपने साथ रखेंगे और उसे बार बार पहनेंगे। ओम शांति।
से भर ली।